महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुं। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। आचार्य श्री बुधबली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें यह चौथा प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है और छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 पर हम आ गए। यहाँ अपना प्रदेश बंध का प्रकरण है और जघन्य प्रदेश बंध के स्वामी की हम बात कर रहे थे। जब उत्कृष्ट प्रदेश मूल प्रकृतियों में देखना है तो जहाँ कम से कम प्रकृतियां बनती है, 6 प्रकृति की जो स्थान है उसको लिया था। मोहनीय के लिए 7 का बंध करने वाले, पहले से 9वें तक कहीं पर भी हो सकता है, पर संगी पंचेंद्रिय लिया था। आयु का तो जब 8 का बंध होता है तभी आयु बनती है, और उत्कृष्ट योग वाला लिया था। अभी हमारा जघन्य का प्रकरण है। उत्कृष्ट प्रदेश बंध में उत्कृष्ट योग, जो उत्कृष्ट परिणाम योग होता है उसको लेना है, और जघन्य में उपपाद जघन्य होता है और वो भी सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त के जघन्य होता है। तो वहां तो 7 कर्म बंधेगी। हाँ, आपका प्रश्न है। हाँ, एक इंद्रियों में भी सूक्ष्म निगोद का सबसे, फिर से एक इंद्रिय जीव, शरीर नाम कर्मों को क्यों लिए बीच में? खाली शरीर नाम कर्म नहीं, कौन सा वो समास वाला जीव है उसको भी लेना है। वो जो बांध रहा है उसकी बात नहीं करना, सत्ता में पड़ा है ना। योग बंधा नहीं जाता, अनुभाग। विग्रह गति में वो तो सहज ऐसा ही। क्यों नहीं होगी? वो तो जिस समास में आ गया है वैसा उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप बारंबार योग में बात कर रहे हैं, योग का कोई सवाल नहीं है। योग में अपकर्षण उत्कर्षण कहने का सवाल ही नहीं होता। योग में क्यों लगा रहे आप अपकर्षण उत्कर्षण? योग डायरेक्ट असंख्यात गुना बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता? अभी उसकी बात छोड़ो, योग डायरेक्ट ले लो। जीव के योग वो तो निमित्त से होता है, आपकी मान्यता है? यही तो कहते हैं जो एक इंद्रिय से आया है वो पंचेंद्रिय के योग्य करेगा, क्योंकि वो तो उपादान से हो रहा है। इसे तो ये निमित्त से नहीं होता, यही तो बात ये घटित करते हैं, क्योंकि अनंत काल वहां से लेके आए। तो योग की बात छोड़ो, अन्य कर्मों का भी अनुभव एकेंद्रिय योग्य था कि नहीं था, और यहाँ पंचेंद्रिय में आते ही पंचेंद्रिय के योग्य बनता है, यानी वहां उसके उदय में ये उत्कृष्ट होता है ऐसा, उसके कारण होता है ऐसा तो है ही नहीं है। देखो अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये जघन्य की बात चल रही है। हमने देखा ना सात कर्मों का जघन्य कौन है, वो कल पढ़ा था, फिर पढ़ते हैं। देखो अन्यतर सूक्ष्म निगो जीव अपर्याप्त है, यानी लब्धि अपर्याप्त जो है, प्रथम समय में तद्भवस्त हुआ है, उसका अर्थ है उपपाद योग है, जघन्य योग वाला है, उपपाद में से भी उसका जघन्य है, और जघन्य प्रदेश बंध में अवस्थित है, क्योंकि जघन्य योग वाला जघन्य प्रदेश बंध कर रहा है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म का कौन होगा, वही जो लब्धि अपर्याप्त जो आठ कर्मों का बंध कर रहा है, तृतीय भाग में कहेंगे और तृतीय भाग के प्रथम समय में लेना, क्योंकि वो परिणाम योग का पहला समय है। पहले समय में ही आयु बंधनी चाहिए जरूरी नहीं है, परंतु ये पहले समय में बांध रहा है। जघन्य योग वाला जघन्य प्रदेश बंध में अवस्थित है। तो ऐसा ही जहां जहां ये सूक्ष्म निगोद इंक्लूडेड, ऐसे सभी मार्गणाओं में हमने देख लिया था। अभी हमको आदेश से हम पढ़ेंगे मार्गणाओं में नारकियों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। अन्यतर जीव असंगियों में से आकर नारकी हुआ है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। और आयु कर्म के जघन्य प्रदेश का स्वामी कौन है, अब ये तो अंत के छह महीने में आयु बंधेगा है ना। अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, घोलमान जघन्य योग वाला, घोलमान का ही होता है परिणाम योग वाला, यानी वो कभी अधिक हो सकता है, कहीं नहीं वृद्धि होती है, हानि होती है, अवस्थित हो सकता है, उसको घोलमान कहेंगे। तो घोलमान जघन्य योग वाला जीव, ये घोलमान शब्द और कहाँ आया था, याद नहीं है लक्ष्मी आपको भी याद नहीं है, क्षपित कर्मांशिक और गुणित कर्मांशिक, गुणित घोलमान और क्षपित घोलमान ऐसा शब्द आया था है ना। तो यहाँ ये योग में घोलमान लगा रहे, यानी परिणाम योग के लिए यहाँ घोलमान शब्द आया, वो आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। हाँ असंगी जो नरक में जाएगा, पहले नरक में जाता है, पहले नरक के भी ऊपर के पाथरों में जहां तक वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण आयु है वहां तक, क्योंकि उसकी इसीलिए वो ज्योतिष में भी नहीं जाता, हमने देखा था। और इसलिए कहते इस प्रकार कहाँ कहाँ होगी, प्रथम पृथ्वी में है ना, तथा सामान्य देव भवनवासी और व्यंतरों के जानना चाहिए। अब नीचे के नरकों में ऐसा नहीं कहेंगे, तो द्वितीय आदि नीचे की छह पृथ्वियों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है। अन्यतर मिथ्या दृष्टि, क्योंकि द्वितीय आदि पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि ही जन्मेगा। कुछ आवाज आ रही है ना घूम घूम करके, अन्यतर मिथ्या दृष्टि प्रथम समय में तद्भवस्थ हुआ, यानी उपपाद योग वाला लेना, और जघन्य योग वाला नारकी उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। ये तो समझ में आ गया ऐसे ना, सात कर्मों के वहां पर लेना। और आयु कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है, सामान्य नारकियों में मिथ्या दृष्टि या सम्य दृष्टि लेना है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी मिथ्या दृष्टि नारकी होता है। शासादन वाले को लिया क्या यहाँ पर, आपका प्रश्न था ना कल। हाँ, क्योंकि शासादन में सातवें नरक में आयु बनती ही नहीं है, ना ही मरण भी होता है। देखो पंचेंद्रिय तीर्यंचों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंगी जीव अपर्याप्त है। अब पंचेंद्रियों में असंगी अपर्याप्त ने लब्धि अपर्याप्त लिया, क्योंकि पंचेंद्रियों में अभी हमको जघन्य योग देखना था। उत्कृष्ट योग के समय पंचेंद्रियों में हमेशा हम संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त इसी बात करते थे। अब जघन्य योग में असंगी पंचेंद्रिय, और यहां पंचेंद्रिय नहीं कहा क्योंकि पंचेंद्रिय की मार्गणा है, इसलिए तो असंगी जीव अपर्याप्त का अर्थ है असंगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त। प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। हाँ प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ दिया, हाँ, परंतु हमने वो योगम में देखना ना, योग के प्रकरण में नहीं, वो निगोद में वो लिया था ना, 6012 बार करता है, जीवकांड में था, जीवकांड के योग मार्गणा में था। अभी आपको निकालना पड़ेगा वो, क्योंकि इसमें तो वो बात नहीं लिखी है ना, केवल सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त इतना ही लिया है। लेफ्ट साइड में है वो बड़ी पुस्तक जो लिखा है ना, उसके ऊपर डी लिखा है, डी और यू लिखा है, वो यू वाला मेरे को देना, वही सामने वाला। अब कहां से क्या निकाल रहे, वो नहीं, वो बड़ी पुस्तक है ना, वो जीवकांड लिखा है, देखो जाड़ी पुस्तक है जीवकांड की, उसके लेफ्ट में, हाँ वो वाली, हाँ वो वाला देना मेरे लिए, योग मार्गणा। पेज नंबर 377 के आगे कहीं पर होगा, उसमें अपने जो विषय चाहिए वो देखते हैं। इसमें है कि नहीं है, वो तो उत्कृष्ट संचय वगैरह लिया है या, हाँ हाँ, तो तद्भवस्थ का अर्थ ही वो होता होगा ऐसा मुझे लगता है। तद्भवस्थ कहने का प्रयोजन ही होगा, रुजुगति से आया हुआ, पर रुजुगति से आया हुआ तो नारके में पहुंचते तो नारके जैसा हो जाएगा, विग्रह गति में ही लेना पड़ेगा उसको। जैसे स्थिति बंध कहाँ लेते हम, विग्रह गति में लेते थे, वैकरेक, अभी वैकरेक मिश्र में देखो और कर्मण का योग में देखो, अभी इसी पुस्तक में जो स्वामित्व देख रहे हो, उपपाद ही लेना है, परंतु वो वैकृत मिश्र लेना के कारमान लेना उसी में देख लो पहले। हाँ, वैकृत मिश्र में लिया है प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ पेज नंबर 26। यस, 52 नंबर में। नहीं, पर यहाँ कारमान का योग में वही सूक्ष्म निगोदी है लिया। प्रथम समयवर्ती विग्रह गति में विद्यमान लिखा है। कारमान का योग के लिए विग्रह गति शब्द डाला उसी के नीचे कारमान का योग में, और यहाँ तद्भवस्थ लिया क्योंकि वहां वैकृत मिश्र घटित करना था, इसलिए प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ लिया है। परंतु नारकी के लिए तद्भ वहां पर भी असंगी से आया हुआ ही लिया औदारिक मिश्र में भी। अब जो आगे बढ़ते अभी अपना विषय चलेगा आगे, पेज नंबर 23 पर निकालो। वो उस भव का पहला समय ऐसा ही लेना है, पर वैकृत मिश्र में तो असंगी से आया हुआ परंतु वहां रुजुगति से आया तभी उसको कहीं घटित होगा। वैकृत मिश्र में जब घटित करना है तो रुजुगति से ही आना होना चाहिए, और कारमान का योग में घटित करना है तो तमोर से आया हुआ लेना चाहिए। कारमान में विग्रह गति ही लिए क्योंकि विग्रह गति में ही कारमान का योग होता है, परंतु जघन्य किस में लिया? प्रथम तद्भवस्थ, प्रथम समय में तद्भवस्थ लिया। प्रथम समय में तद्भवस्थ जो लिखा था ना, हाँ, रुजुगति से ही पकड़ना चाहिए। 237 कल हमने देखा था ना यहाँ पर। केवल उपपाद इतना ही क्या उन्होंने? वो तो यहाँ नहीं लिखा है, वो तो अन्यत्र हमने देखा था इतने बार। वो तो ज्ञान के जगने के लिए बताया था। एक मिनट, जगने योग स्थान जो बताया था जगन्य में तो विग्रह गति में ही लेना है, पेज नंबर 222 कर्मकांड। गाथा पर्याय धारण मिला का पर्याय धारण करने के पहले समय में स्थित जीव के उपाद योग स्थान होता है, भले वो विग्रह गति में हो या मिश्र का योग में। उपपाद कब कहेंगे? प्रथम समय में। जो जीव विग्रह गति अर्थात वक्र गति द्वारा बीच में मुड़कर जाता है और नवीन पर्याय को प्राप्त होता है उसके जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। और जो अभी सुनो, जो जीव रुजुगति अर्थात मोड़ बिना की सीधी गति से नवीन पर्याय को धारण करता है उसके उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान होता है। वे उपपाद योगस्थान 14 जीवाश्म जीव समासों में जानना। स्पष्ट बताए ना यहाँ पर, पहला समय गिनेंगे ना, जघन्य कब होगा, पहले समय में उपपात तो है ही, सबका उपपात तभी कहेंगे जो जघन्य, तो मोड वाले से जाएंगे। हाँ, मैंने जघन्य उपपात मोड वाले में होता है, उपपाद में से जघन्य उत्कृष्ट दे ना, और उत्कृष्ट योग, उत्कृष्ट उपपाद योग, हाँ ऋजुगति वाले के होगा। तद्भव से भव धारण करने का पहला समय, भव उसका विग्रह गति से भव शुरू हो जाता है। और यहां पर भी असंगी से आए हुए जगन्य किसके होगा, रुजु विग्रह गति में ही उसका जगन्य होगा। सभी क्वेरी हो गई कि अभी आगे बढ़ेंगे ना, 23 नंबर के पेज पर पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात देख रहे थे, फिर पढ़ू जो अन्यतर असंगी जीव अपर्याप्त ने लब्धि पर्याप्त है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्त है और जघन्य योग वाला है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर असंगी जीव अपर्याप्त है, शुल्लक भव ग्रहण के तीसरे त्रिभाग में विद्यमान है और जघन्य योग वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। इसको भी असंगी पंचेंद्रिय को लेना, क्योंकि हमारी मार्गणा पंचेंद्रिय तिर्यंचों की है, असंगी मार्गणा नहीं है। असंगी की मार्गणा होती तो निगोद के लेते। हाँ, तो असंगी पंचेंद्रियों में भी हो, क्योंकि पंचेंद्रिय इसलिए नहीं कहा क्योंकि मार्गणा ही पंचेंद्रियों की है। शुल्लक भव है ना, वो तो लब्धि अपर्याप्त का जो तीसरे त्रिभाग में विद्यमान है और जघन्य योग वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। हमने देखा था तीसरे त्रिभाग का पहला समय, पहले हमने देख लिया था जब ओग में देखा था तब। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी जीवों में जानना चाहिए। वो पर्याप्त में क्या कहेंगे, उसे में असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे। वो निवृत्ति अपर्याप्त का पहला समय लेना, भव का पहला समय। इतनी विशेषता है कि यहाँ आयु कर्म के जघन्य प्रदेश का बंध का स्वामी असंगी यानी असंगी पंचेंद्रिय, अपनी मार्गणा पंचेंद्रिय की है। घोलमान योग वाला, घोलमान योग वाला का अर्थ है परिणाम योग वाला, उसमें से जघन्य चाहिए। और जघन्य प्रदेश बंद करने वाला जीव होता है, परिणाम योग में ही उसकी आयु बंधेगी, वो कहीं पर भी हो सकता है उसका। जघन्य प्रदेश बंद करने वाला होना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में ऊपर बात कौन सी थी, पंचेंद्रिय तिर्यंच इन जनरल था, उसमें भी असंगी अपर्याप्त को पहला समयवर्ती लिया था। अब पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त मार्गणा ही हमारी, सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर असंगी जीव, केवल असंगी कहा, ना पंचेंद्रिय कहा ना अपर्याप्त कहा, क्योंकि मार्गणा हमारी वही है। तो पंचेंद्रियों में संगी भी हो सकते असंगी भी हो सकते, इसलिए केवल इसमें असंगी कह दिया। तो असंगी जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, यानी जघन्य उपपाद योग लेना इसको। वो भी विग्रह गति वाला होना चाहिए पहला समय वाला। हमने देखा था ना जघन्य उपपाद योग मोड़ वाले विग्रह गति में होता है। वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अभी अपर्याप्तकों में जो असंगी जीव क्षुल्लक भव ग्रहण के तृतीय त्रिभाग में विद्यमान है और जघन्य योग वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। अब मनुष्यों में ये डायरेक्ट उन्होंने पंचेंद्रिय तिर्यंच इसलिए लिया क्योंकि सामान्य तिर्यंचों को तो ओक के समान कहा था, जिसमें निगोद भी जीव इंक्लूडेड थे। मनुष्यों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंगियों में से आकर मनुष्य हुआ है। असंगियों में से ना एकेंद्रिय से असंगी तक कोई भी हो सकता है। एकेंद्रिय से आएगा तो भी असंगी जैसा ही बंध करेगा, और असंगी पंचेंद्रिय से आएगा तो भी असंगी जैसा होगा। ऐसा नहीं कि एकेंद्रिय से आने वाला और कम करेगा, ऐसा भी नहीं है। फिर से असंगी से आया यानी एकेंद्रिय भी असंगी है, असंगी पंचेंद्रिय भी असंगी, कहीं से भी क्यों ना आए वो योग उसका समान होगा, असंगी पंचेंद्रिय जैसा होगा उसका। क्या कहते हैं सात कर्मों का लेना? जो अन्यतर असंगियों में से आकर मनुष्य हुआ है, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। यहाँ ऐसा नहीं लेके मनुष्य अपर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो बंध तो असंगी जैसा योग कर रहा है उसका। ख्याल में आती बात? आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अब यहाँ पर वो लब्धि अपर्याप्त को लिया, जो अन्यतर क्षुल्लक भव ग्रहण के तृतीय त्रिभाग के प्रथम समय में स्थित है। देखो ऊपर प्रथम समय डाला नहीं था उन्होंने पंचेंद्रिय तिर्यंचों में, हाँ, पर जैसे ओग में भी डाला था यहाँ पर भी डाला है, ये होना चाहिए क्योंकि वहां मरिनाम योग भी मिनिमम होगा। तो अन्यतर क्षुल्लक भव ग्रहण करके भव ग्रहण के तृतीय त्रिभाग लिया। एक मिनट, आयु के त्रिभाग, हाँ, क्षुल्लक भव ग्रहण का तृतीय त्रिभाग, हाँ बराबर, यानी वन थर्ड बाकी था, तभी टू थर्ड बीत गए, वन थर्ड बाकी है। प्रथम समय में स्थित है और जघन्य योग वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। हमने क्या नोटिस किया? देखो सात कर्मों के जघन्य के लिए वो एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय कहीं से भी मरकर मनुष्य में आया है उसको लेना है, और वो भी हम विग्रह गति में लेंगे। परंतु आयु कर्म के लिए लब्धि अपर्याप्त मनुष्य को लेना है, क्षुल्लक भव है, दो तिहाई बीत गई, वन तिहाई बाकी है, तो वहां उसके पहला समय लेना। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि यहाँ आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी अन्यतर घोलमान जघन्य योग वाला मनुष्य होता है, वो कहीं पर भी होता है, क्योंकि पर्याप्त ही जीव है। तो उसके परिणाम योग स्थान में जब आयु बंध का अवसर होता है उसका, परंतु कंडीशन क्या है? योग जघन्य होना चाहिए, इसलिए घोलमान जघन्य योग वाला कह दिया, यानी परिणाम योग है। यहाँ पर मनुष्य अपर्याप्तकों में सामान्य मनुष्यों के समान भंग है। सामान्य मनुष्यों के क्या? कि जो सात कर्मों का असंगी से आया हुआ पहला समयवर्ती तद्भवस्थ जघन्य योग वाला लेना, और आयु का तो बता ही था। ज्योतिषी देवों में दूसरी पृथ्वी के समान होंगे, मनुष्यों के बाद देवों का नंबर था, पर सामान्य देव और भवनवासी व्यंतर का तो नारकी के समान बताया था असंगी से आने वाले को। अब यहाँ ज्योतिषी देवों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है। क्या भंग है? ये तो मिथ्या दृष्टि ही लिया था, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि में जन्मेंगे। तो द्वितीयादि पृथ्वी में देखा था हमने कि पहले समय में तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, बस इसको ले लेना। सौधर्म और ऐशान कल्प से देखो, दूसरी पृथ्वी में तो मिथ्या दृष्टि को ही लिया था, परंतु यहां सांसाधन वाले को ले सकते कि नहीं ले सकते? क्योंकि मिथ्या तो सांसाधन दोनों ही होते हैं ना, भवनत्रिक में जन्मने वालों के, कि नहीं होते? क्यों जरूरी? जरूरी नहीं है। लब्धि वैकरिक मिश्र में कहीं पर भी वो मिथ्या तो में जा सकता है ना, पर सामान्य से कह दिया उन्होंने। यहाँ बात इतनी कि इसमें असंगी नहीं जन्मते, बस इतनी बात है। सौधर्म और ऐशान कल्प से आगे 24 पेज पर आना, लेकर उपरिम ग्रेविक तक के देवों में 7 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह उक्त 7 कर्मों के, जघन्य शब्द डालना बीच में, जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। तो ये सांसाधन की बात नहीं ली है, सामान्य से मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि दो भेद किए हैं, परंतु यहाँ सांसाधन को भी समझ लेना। क्योंकि सांसाधन मार्गणा में भी अगर हम देखेंगे, 3 गति का प्रथम समय वर्ती लिया है, यानी यहाँ सांसाधन भी ले सकते हैं। हाँ, अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, सेकंड लाइन में। हाँ, सांसाधन भी होगा। हाँ, अपनी समझ लेके लिए समय दृष्टि, सांसाधन समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। यानी उन्होंने समय दृष्टियों के या मिथ्या दृष्टियों से गुणस्थान नहीं गिनाए हैं, समय दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बस इतना ही गिनाया था। ये 3 लाइन हो गई ना। आयु कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है, यानी गोलमान जघन्य योग वाला लेना। 9 अनुदिश से लेकर सर्वान सिद्धि तक के देवों में 7 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, जो अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वो उक्त 7 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी। ये सब जगह हमको विग्रह गति वाला लेना चाहिए, मोड़ से जाने वाला, उसका योग जघन्य होगा। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी सम्य दृष्टि देव है। ये सारे सम्य दृष्टि ही है, अनुदिश अनुत्तर वाले। अब बादर एकेंद्रियों में एकेंद्रियों के समान भंग है। बादर एकेंद्रिय कहेंगे, इतनी विशेषता है कि जो प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय जीव है। बादर एकेंद्रिय में कोई भी एकेंद्रिय है ना, वो अपर्याप्त बादर एकेंद्रिय जीव है। बादर एकेंद्रिय निगोद को भी ले सकते ना वहाँ पर।
हमने वहाँ पे निगोद देखा,
कहाँ पर? सूक्ष्म एकेंद्रिय। पर निगोद को ले लिया था, वो बादर में भी निगोद को ही लिया था ना। बादर में किसको लिया? नहीं, हमने वो तो स्थान देखे थे ना, उसमें क्या देखा था? बादर निगोद लिखा था ना, कि बादर एक इंद्रिय लिखा था, 238 कुछ था ना। बादर लब्धि अपर्याप्त, बादर एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्त, ऐसा लिया था। बादर एक इंद्रिय इतना ही लिया था, 237-38। पहला ही नंबर सूक्ष्म निगो लब्धि अपर्याप्त, बाद में सूक्ष्म निगो निवृत्ति अपर्याप्त लिया, बाद में सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त, बादर लब्धि अपर्याप्त, ऐसा ही लिया। उसमें फिर उन्होंने जीव समासों में डिफरेंस नहीं किया है, ये स्थावर कायिकों में। हाँ, देखो, बांदर एक इंद्रिय में एक इंद्रियों के समान भंग है, जो हमने पहले देखा था 22 पेज पर, क्योंकि एक इंद्रिय मानग्रहण में कैसा है तो ओग के समान बताया था, परंतु ओग में सूक्ष्म निगोद को लिया था। यह विशेषता क्या है? बादर को लेना, बादर अपर्याप्त में, बादर एक इंद्रिय तो कह ही दिया है, तो बादर एक इंद्रियों में जघन्य किसको होगा? लब्धि अपर्याप्त वाले। तो प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला होगा, वह सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। इस केवल बादर ऐसा ही लिखना, बादर एक इंद्रिय मार्गणा है हमारी, उसमें निगोद है कि नहीं ये हम उसमें लब्धि अपर्याप्त, बस इतना ही कहना। तो इसी प्रकार आयु कर्म का भंग है, इतनी विशेषता है कि क्षुल्लक भव ग्रहण करे तृतीय तिभाग के प्रथम समय में विद्यमान और जघन्य योग वाला उक्त जीव आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। ये तृतीय त्रिभाग के पहला समय हर जगह कहा है उन्होंने, क्योंकि वहां परिणाम योग मिनिमम होगा। इसी प्रकार अपर्याप्त को में जानना चाहिए, इसी प्रकार अपर्याप्त को का अर्थ क्या है? वहां मार्गणा कौन सी थी? बादर एक इंद्रिय थी। बादर एक इंद्रियों में भी अपर्याप्तों को जगन है, और जब मार्गणा हम बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त कहेंगे तो मार्गणा ही है वह, उन्हीं में जघन्य होगा। तो तद्भवस्थ होने के पहले समय में सात कर्मों का जघन्य, और क्षुल्लक भव के तृतीय त्रिभाग के पहले समय में जघन्य योग वाला आयु का जघन्य। अब पर्याप्त को में, पर्याप्त कहने से बादर एक इंद्रिय पर्याप्त में, ख्याल में आती है ना बात? पहले तो बादर एक इंद्रिय इन जनरल लिया, फिर भी उसमें जघन्य तो अपर्याप्तों का था। जब बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त की मार्गणा थी तो उसमें वैसा ही घटित हो रहा है। जब बादर एक इंद्रिय पर्याप्तों की मार्गणा है तो सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, यानी वो उपपाद योग लेना उनका, उनमें से वो जो जघन्य होगा वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। अब पर्याप्त जीव है, आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी घोलमान जघन्य योग वाला उक्त जीव है, क्योंकि वो परिणाम योग में से जब जघन्य योग होगा उसको घोलमान जघन्य कहा। इसी प्रकार सब बादरों के जानना चाहिए, सब बादर ने बादर पृथ्वी का एक, बादर अग्नि का एक, बादर जल का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक, उसका कथन ऐसा ही होगा। सूक्ष्म एकेंद्रियों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर अपर्याप्त जीव, केवल हमारी मार्गणा सूक्ष्म एकेंद्रिय की थी, उसमें सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त को जघन्य होगा। कब? प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला है, वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी शुल्लक भव ग्रहण के, ये लब्धि अपर्याप्त वो भी मिनिमम आयु वाला लिया ना, शुल्लक भव ग्रहण के तृतीय त्रिभाग के प्रथम समयवर्ती और जघन्य योग वाला जीव है। इसी प्रकार सूक्ष्म अपर्याप्त को में जाना चाहिए। मार्गणा हमारी सूक्ष्म एकेंद्रियों की है, सूक्ष्म एकेंद्रियों में भी अपर्याप्तों को ही जघन्य होता है, और सूक्ष्म अपर्याप्त मार्गणा कहेंगे तो उनमें भी ऐसा ही कथन होगा। सूक्ष्म पर्याप्त को में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर सूक्ष्म पर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी घोटमान जघन्य योग वाला उक्त जीव है। कहीं गोलमान आता है, कहीं घोटमान आता है, दोनों ही सही है। इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवों के जानना चाहिए। सब सूक्ष्म जीव ने सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म वायु का एक और सूक्ष्म वनस्पति का एक। विकलेंद्रियों में अपर्याप्तकों के समान बंध है। मैंने विकलेंद्रिय जीव इन जनरल जब कहेंगे तो विकलेंद्रिय द्विंद्रिय जीव बात करेंगे तो द्विंद्रिय अपर्याप्त को जघन्य होगा। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकों में, जब विकलेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे, द्विंद्रिय पर्याप्त की बात करेंगे तो उसमें सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला है, वह उक्त कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। जो सामान्य से द्विंद्रिय कहेंगे तो अपर्याप्त को लेना है, जब स्पेसिफिकली पर्याप्त की मार्गणा बता रही है तो उसका प्रथम समयवर्ती लेना। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी गोलमान जघन्य योग वाला जीव है। जब विकलेंद्रियों में अगर जघन्य देखना है तो लब्धि अपर्याप्त का पहला समय, त्रिभाग का पहला समय, और पर्याप्तों में देखना है तो गोलमान जघन्य योग वाला जीव लेना। पंचेंद्रिय त्रिक में पंचेंद्रिय तीर्यंचों के समान भंग है। ये मार्गणा हमारी इंद्रिय मार्गणा है ना, उसकी अपेक्षा से पंचेंद्रिय त्रिक में, यानी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय अपर्याप्त, तो उसमें सब में पंचेंद्रिय जनरल ले लो और पंचेंद्रिय अपर्याप्त लो, तो उसमें असंगी अपर्याप्त को ही लेना है। ख्याल में आए थे बात? फिर से मार्गणा हमारे पंचेंद्रिय त्रिक, ये इंद्रिय मार्गणा है, पंचेंद्रिय सामान्य है, पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय अपर्याप्त। हाँ ना, यहाँ योनिनी बात, वो तीर्यंच योनिनी में, तीर्यंच पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय तीर्यंचों में योनिनी को लेते, केवल पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त और पंचेंद्रिय अपर्याप्त। अब पंचेंद्रिय मार्गणा में जघन्य योग तो असंगी पंचेंद्रिय की होगा, तो पंचेंद्रिय जनरल कहो और पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहो, असंगी अपर्याप्त को लेना है, उसमें जघन्य उपपाद होगा, और आयु के लिए क्षुद्र भव के तृतीय त्रिभाग के पहले समय में लेना। ख्याल में आई बात? पंचेंद्रिय पर्याप्तों में क्या कहेंगे? पहला समयवर्ती तद्भवस्थ लेना, असंगी में ही लेना, असंगी में। हाँ, तो पहला समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला। और आयु कर्म का जो पर्याप्तों में लेना है तो घोलमान जघन्य योग वाला लेंगे। ये हो गए ना, पंचेंद्रिय तीरंजों के समान भंग है। त्रसक आयिकों में, अब त्रसक आयिक कहने से द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय आते हैं, और उसमें योग में जघन्य किसके होगा? द्विन्द्रिय पर्याप्त के होगा। ख्याल में आती ना हमको कैसे सोचना है, पहले हमारी मार्गणा कौन सी है और उसमें से मिनिमम योग किसके होगा वो देखना है। तो त्रसकायिकों में, स्थावर कायिकों में तो हमने देखा था तो एक इंद्रिय के समान था, त्रसकायिकों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है जो अन्यतर द्विन्द्रिय पर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है जो अन्यतर द्विन्द्रिय अपर्याप्त जीव क्षुल्लक भव ग्रहण के तृतीय त्रिभाग के प्रथम समयवर्ती है और जघन्य योग वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार त्रस अपर्याप्त को में जानना चाहिए, क्योंकि त्रस इन जनरल कहेंगे तो भी अपर्याप्त उसका स्वामी है और अपर्याप्तों की बात हुई तो बता ही चुके हैं। त्रस पर्याप्त को में, अब त्रस पर्याप्त में लक्ष्मी जघन्य किसको होगा? द्विन्द्रिय पर्याप्त को होगा, प्रथम समय वर्ग। तो त्रस पर्याप्त को में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है जो अन्यतर द्विन्द्रिय जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी घोलमान जघन्य योग वाला जीव है। घोलमान कहो घोटमान कहो दोनों शब्द आते हैं। पांचों कायों वालों का भंग एक इंद्रियों के समान है, वो बांदर और सूक्ष्म में उन्होंने सभी सूक्ष्म सभी बांदर लिया था, अब यहाँ सब काय वाले यानी पृथ्वी काय वगैरह एक इंद्रिय के समान है, वो तो हम देख चुके। पांचों मनोयोगी और तीन वचन योगी जीवों में, अब मनोयोग और वचन योग इसमें तो पहला समय तद्भवस्थ नहीं कह सकते क्योंकि तो पर्याप्त जीव है। हाँ, तो पांचों मनोयोगी और तीन वचन योगी, तीन वचन योगी इसलिए किया क्योंकि अगर हम सामान्य वचन योगी कहते तो द्विन्द्रिय से लेना पड़ेगा और ये कैसे मात्र संगी पंचेंद्रिय है, इसलिए पांचों मनोयोगी और तीन वचन योगी जीवों में आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है जो अन्यतर चार गति का सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला। सूक्ष्म सांप्रदाय में उत्कृष्ट होता है, जघन्य कैसे होगा? जघन्य के लिए अधिक प्रकृतियां बननी चाहिए। वो हमने मैक्सिमम में लिया था उसको, यहाँ मिनिमम की बात है ना, तो मैं और आठ कर्मों के बंधे तो आठ में विभाजन होगा, आयु का भी वही है और अन्य कर्मों का भी वही है। कुछ कह रहे थे और अनुदय भी निकाला। हाँ, अनुदय जो अनुभय, सॉरी अनुभय अनुदय ने अनुभय, हाँ द्विन्द्रिय में होता है ना सामान्य और अनुभय बिना। ये संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त कहीं होगा, इसलिए प्रथम समयवर्ती नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे फिर? घोलमान जघन्य योग वाला, क्योंकि एकांत वृद्धि कब तक होती है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। बाद में क्या होता है उनका? घोलमान योग होता है, तो उसमें से जघन्य लेना। और आठ कर्मों का बंद करने वाला, वहां पर भी उसका पहला समय या ऐसा कुछ नहीं लिया, क्योंकि जहां आयु बनती है उस समय लेना है क्योंकि आठ में विभाजन होगा, यानी परिणाम योग है और आठ कर्म बंद रहे, वो उक्त आठ प्रकार के कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। ये समझ में आते हैं बात? क्योंकि हम बहु का पहला समय इसलिए नहीं लेते कि वहां तो मन योग ना होता है ना वचन योग होता है। दो वचन योग वाले जीव में दो वचन योग किसके होता है? सामान्य और अनुभय। तो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय सबके होता है, उसमें से योग कम किसका होगा? तो द्विंद्रिय के होगा। तो कहते दो वचन वाले योग वाले जीवों में आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला और गोलमान जघन्य योग वाला द्विंद्रिय जीव उक्त आठ कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। ये हर एक जो है वो क्यों कहा ये हमको समझ में आनी चाहिए। औदारिक कायोगी जीवों में, अब औदारिक कायोग का यहाँ पर भी भव का पहला समय नहीं ले सकते क्योंकि कारवाण का योग होगा, औदारिक मिश्र होगा, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो औदारिक कायोगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो सूक्ष्म निगोदिया जीव, औदारिक कायोग में तो सारे आए ना, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय है, उसमें भी सूक्ष्म निगोदिया लिया प्रथम समयवर्ती पर्याप्त, क्योंकि जो लब्धि पर्याप्त उनके तो औदारिक मिश्र ही पाया जाता है, औदारिक होता ही नहीं उनको, इसलिए सूक्ष्म निगोदिया पर्याप्त जीवों को लेना पड़ेगा। प्रथम समयवर्ती पर्याप्त यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का समय, और जघन्य योग वाला है वो परिणाम योग वहां से शुरू होता है पर वहां मिनिमम पॉसिबल है, वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव घोलमान जघन्य योग वाला है। आपका प्रश्न का उत्तर इसमें भी आया ना, ये पृथ्वी अग्नि जलवायु वनस्पति में से किसको जघन्य हो? तो सूक्ष्म निगोदिया को होगा, क्योंकि औदारिक का योग तो सबके है, फिर भी लिया तो सूक्ष्म निगोद को, क्योंकि औदारिक का योगी है ना, तो ये पर्याप्त जीव होने चाहिए। तो जो अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव गोलमान जघन्य योग वाला है वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। अब औदारिक मिश्र का योगी जीव में, अब यहां लब्धि पर्याप्त को ले सकते हैं, सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला है, यह हमने रुजुगति से आया हुआ लिखा। औदारिक मिश्र के लेना था, इसलिए यहाँ रुजुगति से पहला समयवर्ती तद्भवस्थ होता है उसको तो विग्रह गति में लेते हैं, पर यहाँ हमारी मार्गणा औदारिक मिश्र की है इसलिए रुजुगति से लाना पड़ेगा। क्या कहते हैं? जो अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ, कैसे आया वो? रुजुगति से। और यहाँ हाँ, और जघन्य योग वाला है वह सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। यहाँ लब्धि पर्याप्त लेना पड़ेगा ना, उन्होंने लब्धि पर्याप्त नहीं कहा। क्योंकि उसमें पर्याप्त भी ये हो सकते हैं ना। ये कैसा होना चाहिए? रुजुगति से आया हुआ, क्योंकि औदारिक मिश्र की बात चल रही, इसलिए आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर जीव है जिसका भंग सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त कों के समान है। हाँ, त्रिभाग का पहला समय है। अब वैकृत कायोगी जीव में, वैकृत कायोग ऐसे है जैसे हमने औदारिक कायोग देखा था, शरीर पर्याप्ति होने पर शुरू होता है, वैकृत कायोग भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, उसमें देवनार की लेना दोनों को। तो वैकृत कायोगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? प्रथम समय में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, यानी शरीर पर्याप्ति पर पूर्ण करने का ही समय, और जघन्य योग वाला अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, देव और नार के, यानी वो सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है उसके अनुसार योग में कोई भेद नहीं पड़ता। उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी कौन है? गोलमान जघन्य योग वाला सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, अन्यतर देव और नार की जीव, आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। वही गोलमान कहो घोड़मान गोलमान कहो की बात है। क्योंकि आयु का बंध तो पर्याप्त जीवों के अंत में होगा, 6 महीने बाकी है तब, वहां तो गोलमान जघन्य योग वाला लिया। अब वैकृत मिश्र का योगियों में, जब वैकृत मिश्र कहते हैं तो असंगी से आया हुआ, रुजुगति से आया हुआ यहां भी ले सकते हैं। हाँ, तो वैकृत मिश्र का योगियों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो असंगियों में से आकर देव और नारकी हुआ है, ऐसा अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्भवस्त और जघन्य योग वाला जीव, यानी ये भी रुजुगति से आया हुआ ही लेना। और जघन्य योग वाला जीव उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आहार का योगी जीव में, आहार का योग कहाँ होता है? मात्र छठे में। आहार का योगी जीव में आठों कर्मों के, क्योंकि आयु बंदगी तभी तो जघन्य होगा, जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर प्रथम समय में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ। ये कौन सी शरीर पर्याप्ति? आहारक शरीर संबंधी भी 6 पर्याप्ति होती है। कौन सी 6 पर्याप्ति याद है? बोलो बोलो। श्वास रुक के, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति होती है ना, आहार शरीर संबंधी ये 6 पर्याप्ति है। अन्यत्र जो पर्याप्ति होती है तो भोग के पहले स्टार्टिंग में होती है, और यहाँ हाँ आहार शरीर बनाना था ना, तो आहार का योग में अब ये शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के, जैसे हमने वैकृत का योग में औदारिक का योग में शरीर पर्याप्ति का पहला समय लिया था, आहार शरीर में भी ऐसा ही लेना। आहार का योगी जीवों में अन्यतर प्रथम समय में शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, यानी आहारक संबंधी शरीर पर्याप्ति, और 8 प्रकार के जघन्य योग वाला ने 8 प्रकार के कर्मों का बंद कर रहा है और जघन्य योग वाला, ऐसा डालो बीच में। अन्न अठविध पढ़म समय आहार यस्य जघन्य योगी, देखो देखो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ और 8 प्रकार के कर्मों का बंद कर रहा है, अठविध लिखा ना, पज्जत गदस्य अठविध, यानी 8 प्रकार के कर्मों का बंद कर रहा है, और कैसा है? जघन्य योग वाला है वो, उक्त 8 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। क्योंकि हमने देखा ना जघन्य में तो 8 कर्मों का बंध लेना है, यहाँ पर आहार मिश्र का योगी जीवों में 8 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर 8 प्रकार के कर्मों का बंध कर रहा है, यहाँ पर भी 8 प्रकार ने आयु भी बनती उनको स्वीकार है, 26 पेज पर। प्रथम समय में आहारक हुआ है, आहारक मिश्र हुआ है चाहिए, आहारक हुआ है, आहारक हुआ है ना, आहारक मिश्र का योग वाला है, आहारक हुआ है बराबर है, आहारक मिश्र योगी है, प्रथम समय में आहारक हुआ है और जघन्य योग में विद्यमान है, वह आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। उस किसका आहारक हुआ है? आहारक शरीर संबंधी आहारक हुआ है, क्योंकि वहां पर भी आहारक भी था। जब औदारिक शरीर संबंधी आहारक ही था और यहाँ पर भी आहारक ही रहा, वो कभी अनाहारक हुआ ही नहीं था, परंतु आहारक हुआ है ना। आहारक मिश्र का योगी हुआ ऐसा लेना, और जघन्य योग में विद्यमान है, वह आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। ये हो गया। वहां पहले समय में भी कर्म बांधता है, अभी का कर्म बांध सकते हैं। कार्मण का योगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो सूक्ष्म निगोदिया जीव, वो लब्धि पर्याप्त लेना, वो हमने पहले देखा था। मैंने सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती विग्रह गति में विद्यमान है, तद्भवस्व नहीं लिया, क्योंकि उसमें भी दो भेद है ना। विग्रह गति के वाले को जघन्य उपपाद होगा और रुजगति वाले को तो उत्कृष्ट उपपाद उसमें होगा किसी के। और जघन्य योग वाला है वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार अनाहारकों में जानना चाहिए, जैसा कारमान का योगी में लिया वैसा ही अनाहारकों में लेना चाहिए। ये तो योग का योग मार्गना हो गए। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में वेद मार्गना अभी यहाँ चलेगी। तो स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में ये क्या विशेषता होगी यहाँ लक्ष्मी? ये पंचेंद्रिय हो गए और पर्याप्त ही हो गए। संज्ञ को असंज्ञ को लेना, असंज्ञ को लेना पड़ेगा, क्योंकि असंगी पंचेंद्रियों में भी स्त्री वेदी पुरुष वेदी है ना, असंगी को लेना पड़ेगा। देखो, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंगी जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला है। प्रथम समयवर्ती विग्रह गति में देखा था हमने, वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अभी देखो, ये तो पर्याप्त जीव है, तो घोलमान जघन्य वाला लेना पड़ेगा, फिर भी उसमें असंगी जीव लेना। पंचेंद्रिय इसलिए नहीं डाला क्योंकि स्त्री वेदी पुरुष वेदी तो पंचेंद्रिय होते हैं, तो इसमें असंगी पंचेंद्रिय समझना। तो जो असंगी पंचेंद्रिय घोलमान जघन्य योग वाला है वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। ये समझ में आई बात कि मार्गणा हमको हमेशा ख्याल में रखना है। अब नपुसक वेद में तो ओक के समान बता दिया था, क्योंकि उसमें वो सूक्ष्म निगोद लब्धिया पर्याप्त भी पाया जाता है, इसलिए डायरेक्ट अपगत वेदी को लिया। अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर अपगत वेदी जीव घोलमान जघन्य योग वाला है, क्योंकि वहां पर भी परिणाम योग में कभी जघन्य कभी उत्कृष्ट होते रहते हैं। तो घोलमान यानी परिणाम योग में से जो जघन्य योग वाला है वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। सातों को ले लेना, आयु बनती नहीं यहाँ पर, और साथ ही लेना, जब छह बंध रहे तो उत्कृष्ट हो जाएगा। इसलिए अपगत वेदी में सात कर्मों का बंध करने वाले कौन है? तो नवे गुण स्थान वाले ही होंगे, दसवें को यहाँ नहीं ले सकते, इसलिए सात कर्मों का बंध करने वाले बता दिए ना उन्होंने। निवृत्तिकरण में लेना, इसी प्रकार सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में छह कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामित्व जानना चाहिए। यानी अन्यतर जीव घोलमान जघन्य योग वाला इतना ही कहेंगे हम। क्योंकि वहाँ छह ही बनती है ना, अन्य कोई विकल्प ही नहीं है वहाँ पर, इसलिए उनका जघन्य जब उसका योग जघन्य है। ये छह यानी सूक्ष्म सांप्राय में ही केवल ये बात घटित होगी। सामान्य से जब कहते छह कर्मों का जघन्य कहाँ है, तो सूक्ष्म सांप्राय में। तो जब मार्गणा ही सूक्ष्म सांप्राय की है तो उसमें जघन्य कब होगा, योग जब जघन्य है तब। परिणाम योग ही पाया जाता है वहां पर, इसलिए गोलमान जघन्य कहेंगे। अब विभंग ज्ञानी जीवों में ये भी संगी पंचेंद्रिय है। अब यहाँ तो भोग का पहला समय नहीं ले सकते। हाँ, जब विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है तब लेना पड़ेगा। ज्ञान मार्गना में विभंग ज्ञानी, क्योंकि मत्य ज्ञानी के बाद श्रुता ज्ञानी के बाद ओके समान देखी थी हमने, क्योंकि उसमें सूक्ष्म युगो आ गया, इसलिए डायरेक्ट विभंग ज्ञानी लिया। ये संगी मिथ्या दृष्टि है ना। तो आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अब यहाँ शरीर पर्याप्ति नहीं लेना, सभी पर्याप्ति, क्योंकि मन पर्याप्ति भी पूरी होनी चाहिए। तो उसके तो गोलमान योग हो जाता है। जो अन्यतर चारों गति का विभंग ज्ञानी जीव, चारों गति का लिया, गोलमान जघन्य योग वाला और आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला है, आयु भी वहां बंधनी चाहिए, तभी तो हर कर्म में थोड़ा कम प्रदेश आएगा। वह आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। तो जहां उपपाद योग संभव है वहां उसको लेते हैं, जिस मार्गणा में उपपाद नहीं है वहां घोलमान में जघन्य लेना है और वहां आठों कर्मों को लेना है। समझ में आती ना, कब कहां किसको लेना है, वहां आठों ही कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध होगा। अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी, इसमें उपपाद संभव है कि नहीं है? हाँ लक्ष्मी, होगा ना, सम्यक्त्व के साथ जन्मने वाला पहला समय उसका। तो अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो अन्यतर चारों गतियों का जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्था और जघन्य योग वाला है। अब ये सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होने वाला है, तो तीर्यंच में सम्यक्त्व के साथ जाने वाला वो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ भूभूमि का होगा। मनुष्य में तो वेदक सम्यक् दृष्टि भी हो सकता है, क्षायिक भी हो सकता है। देव में कौन सा होगा? देव में उत्पन्न होने वाला द्वितीयोपशम वाला भी होगा, वेदक भी होगा, क्षायिक भी होगा। यहाँ तो इन जनरल अभिनिबोधिक की बात चल रही है। और नारकी में तो पहले नरक का क्षायिक समय दृष्टि होगा। तो इसीलिए कहते चारों गतियों का जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ और जघन्य योग वाला है, वो उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। वो भी हमने देखे ना, मोड़ वाले में विग्रह गति में जघन्य होगा उपपाद। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? अभी आयु तो पर्याप्त जीवों के बनती है, तो गोलमान कहना पड़ेगा। जो अन्यतर चारों गतियों का जीव आठ प्रकार के कर्मों का बंध करने वाला है, क्योंकि आयु बनती है तो आठों ही कर्म बनते हैं, और गोलमान जघन्य योग वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी है। इसी प्रकार जैसे हमने अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी देखी, इसी प्रकार अन्य मार्गणों में से अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि और वेदक समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदक समय दृष्टि जीवों में दो गतियों के जीव जघन्य प्रदेश बंध के स्वामी होते हैं। हाँ, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व के साथ देव नारकी मनुष्यों में आ सकते हैं और मनुष्य तीर्यंच देव में जा सकते हैं। यानी जो हमने भोग भूमि का तीर्यंच देखा था और नारकी देखा था क्षायिक वाला, उसको छोड़कर उसमें वो कृतकृत्य वेदक हो सकते, पर उसको यहाँ नहीं गिना है उन्होंने, वेदक में उसको नहीं गिना। यानी नवरी वेदके दुगदी, उसका समझ में है ना कारण क्या है? वेदक सम्यक्त के साथ कोई मनुष्य में जन्मेगा या देव में जन्मेगा, मन पर्याय यह रह गया, मन पर्याय ज्ञानी जीवों में। और ये मन पर्याय ज्ञानी तो मुनि होने के बाद होते हैं। क्षायिक ले लिया ना उन्होंने, क्षायिक तो चारों गति में जा सकता है। क्षायिक के लिए और सामान्य समय दृष्टि के लिए चारों गति को बताया। जैसे हमने अभिनिबोधि ज्ञानी में क्या लिया, चारों गतियों का प्रथम समयवर्ती लिया, वैसे अवधि दर्शनी समय दृष्टि क्षायिक समय दृष्टि वेदक, पहले तो वेदक को नाम ले लिया, विशेषता क्या बताइए कि दो गतियों में पहला समय लेना। अब मन पर्याय ज्ञानी जीवों में, तो मन पर्याय ज्ञानी तो गोलमान योग वाले ही हो गए, उसमें उनका जघन्य और वो भी सात कर्मों का जघन्य भी आयु के साथ होगा, इसलिए जब आठों का बंद कर रहा है तो आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी कौन है, जो अन्यतर आठ प्रकार के कर्मों का बंद करने वाला और गोलमान जघन्य योग वाला जीव है, वह आठों कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। इसी प्रकार जैसे मन परे ज्ञानी की मार्गणा देखिए, ऐसा ही संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत, यानी क्या होगा, सबके लिए आठ कर्मों का बंद कर रहा है और गोलमान जघन्य योग वाला है, और संयता संयत जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि ये सभी मार्गणाओं में उसमें कोई ना उपपाद है ना एकांत वृद्धि वाले योग है। चक्षु दर्शनी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी कौन है, जो अन्यतर चतुरिंद्रिय जीव प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह और जघन्य प्रदेश बंद अवस्थित है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी कौन है, जो अन्यतर चतुरिंद्रिय जीव गोलमान जघन्य योग वाला है, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। हमने वहां प्रश्न डाला था, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त क्षुद्र भव वाला क्यों नहीं लिया, जो गोलमान जघन्य योग में वो भी आ गया है ना। चतुरिंद्रिय अपर्याप्त क्षुद्र भव वाला, हाँ वो होना चाहिए, उसका जघन्य गोलमान होना चाहिए, क्योंकि चक्षु दर्शन तो वहां पर भी स्वीकार है ना। वहां पर अब आते 28 पेज पर, पीत और पद्मलेशा में। अब पीत और पद्मलेशा में जघन्य उत्पाद हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। पीत पद्म में तो देव में भी उत्पन्न होगा, या पीत पद्म मनुष्य में समय दर्शन के साथ आएगा, वो भी हो सकता है। तो पीत और पद्मलेशा में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी कौन है, जो अन्यतर देव और मनुष्य, मनुष्य कहने से समय दृष्टि होगा और देव मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि दोनों हो सकते हैं, प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है और जघन्य योग वाला है, वह उक्त सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी कौन है, जो अन्यतर तीन गतियों का जीव, मनुष्य तीरंज और देव, क्योंकि पीत पद्मलेशा तो नारके में होती ही नहीं है, और आयु जो लिखा है तो वहां आठ प्रकार के कर्मों का बंद कर रहा है और घोटमान जघन्य योग वाला है, क्योंकि परिणाम योग में आयु बंधेगी यहाँ पर, वह आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंद का स्वामी है। शुक्ल लेशा में पद्म लेशा के समान बन गए, यानी सात कर्मों के लिए देव और मनुष्य लेना है, मनुष्य में प्रथम समयवर्ती तो समय दृष्टि लेना पड़ेगा, और देव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि शुक्ल लेशा के साथ तो नीचे ग्रहवेक यानी अनंत प्राणत से लेकर ग्रहवेक में भी जाएगा, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। अब यही रुकेंगे हम, दो पैराग्राफ है वो कल पढ़ेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हूँ।